दूसरा सैमुएल बाब 16। दाऊद अभी पहाड़ की चोटी से कुछ आगे निकल गया था कि मफीबोशेत का मुलाजिम ज़ेबा उससे मिलने आया। उसके पास दो गधे थे जिन पर जीने कसी हुई थी। उन पर 200 रोटियां, किशमिश की 100 टिक्कियां, 100 ताज़ा फल और मैं की एक मश्क लदी हुई थी। बादशाह ने पूछा, आप इन चीज़ों के साथ क्या करना चाहते हैं? ज़ेबा ने जवाब दिया, गधे बादशाह के ख़ानदान के लिए हैं, वो इन पर बैठकर सफ़र करें। रोटी और फल जवानों के लिए हैं और मैं उनके लिए जो रेगिस्तान में चलते चलते थक जाएं। बादशाह ने सवाल किया, आपके पुराने मालिक का पोता मफीबोशेत कहाँ है? ज़ेबा ने कहा, वो यरूशलेम में ठहरा हुआ है। वो सोचता है कि आज इसराइली मुझे बादशाह बना देंगे क्योंकि मैं साउल का पोता हूँ। ये सुनकर दाऊद बोला, आज ही मफीबोशेत की तमाम मिल्कियत आपके नाम मुंतकिल की जाती है। ज़ेबा ने कहा, मैं आपके सामने अपने घुटने टेकता हूँ, रब करे कि मैं अपने आका और बादशाह का मंजूर नज़र रहूँ। जब दाऊद बादशाह बहोरीम के करीब पहुँचा तो एक आदमी वहाँ से निकलकर उस पर लानतें भेजने लगा। आदमी का नाम सिमी बिन जिब्रा था और वो साउल का रिश्तेदार था। वो दाऊद और उसके अफसरों पर पत्थर भी फेंकने लगा। अगरचे दाऊद के बाईं और दाईं हाथ उसके मुहाफिज और बेहतरीन फौजी चल रहे थे, लानत करते करते समी चीख रहा, चल दफा हो जा कातिल बदमाश, ये तेरा ही कसूर था कि साउल और उसका ख़ानदान तबाह हुए। अब रब तुझे, जो साउल की जगह तख्त नशीन हो गया है, इसकी मुनासिब सज़ा दे रहा है। इसने तेरे बेटे अबी सलूम को तेरी जगह तख्त नशीन करके तुझे तबाह कर दिया है। कातिल को सही मुआवजा मिल गया है। अबी शह बिन जरूया बादशाह से कहने लगा, यह कैसा मुर्दा कुत्ता है जो मेरे आका बादशाह पर लानत करे? मुझे इजाज़त दें तो मैं जाकर उसका सर कलम कर दूँ। लेकिन बादशाह ने उसे रोक दिया, मेरा आप और आपके भाई युआब से क्या वास्ता? नहीं, उसे लानत करने दें, हो सकता है रब ने उसे ये करने का हुक्म दिया है, तो फिर हम कौन हैं कि उसे रोकें? फिर दाऊद तमाम अफसरों से भी मुखातब हुआ, जबकि मेरा अपना बेटा मुझे कत्ल करने की कोशिश कर रहा है, तो साउल का ये रिश्तेदार ऐसा क्यों न करे? इसे छोड़ दो क्योंकि रब ने इसे ये करने का हुक्म दिया है। शायद रब मेरी मुसीबत का लिहाज करके समी की लानतें बरकत में बदल दे। दाऊद और उसके लोगों ने सफ़र जारी रखा। समी करीब की पहाड़ी ढलान पर उसके बराबर चलते चलते उस पर लानतें भेजता और पत्थर और मिट्टी के ढेले फेंकता रहा। सब थके मादे दरियाए यर्दन को पहुंच गए। वहां दाऊद ताज़ा दम हो गया। इतने में अबी सलोम अपने पैरोकारों के साथ यरूशलम में दाखिल हुआ। अखीतोफुल भी उनके साथ मिल गया था। थोड़ी देर के बाद दाऊद का दोस्त हिव्वी अर्की अबी सलोम के दरबार में हाजिर होकर पुकारा, बादशाह जिंदाबाद, बादशाह जिंदाबाद। ये सुनकर अबी सलोम ने उससे तंजन कहा, ये कैसी वफादारी है जो आप अपने दोस्त दाऊद को दिखा रहे हैं? आप अपने दोस्त के साथ रवाना क्यों न हुए? हिवी ने जवाब दिया, नहीं, जिस आदमी को रब और तमाम इसराइलियों ने मुकर्रर किया है वही मेरा मालिक है और उसी की खिदमत में मैं हाजिर रहूँगा। दूसरे, अगर किसी की खिदमत करनी है तो क्या दाऊद के बेटे की खिदमत करना मुनासिब नहीं? जिस तरह मैं आपके बाप की खिदमत करता रहा हूँ उसी तरह अब आपकी खिदमत करूँगा। फिर अभी सलोम अखीतुफल से मुखातब हुआ, आगे क्या करना चाहिए, मुझे अपना मशवरा पेश करें। अखीतुफल ने जवाब दिया, आपके बाप ने अपनी कुछ दाश्ताओं को महल संभालने के लिए यहाँ छोड़ दिया है, उनके साथ हम बिस्तर हो जाएं, फिर तमाम इसराइल को मालूम हो जाएगा
کہ آپ نے اپنے باپ کی ایسی بےعزتی کی ہے کہ صلح کا راستہ بند ہو گیا ہے. یہ دیکھ کر سب جو آپ کے ساتھ ہیں مضبوط ہو جائیں گے. ابی سلوم مان گیا اور محل کی چھت پر اس کے لیے خیمہ لگایا گیا. اس میں وہ پورے اسرائیل کے دیکھتے دیکھتے اپنے باپ کی داشتاؤں سے ہم بستر ہوا. اس وقت اخی طفل کا ہر مشورہ اللہ کے فرمان جیسا مانا جاتا تھا. داؤد اور ابی سلوم دونوں یوں ہی اس کے مشوروں کی قدر کرتے تھے.